आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते
हैं। फोन से रास्ता करते, 2 लाख रुपए लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज। प्रोड्यूसर हमारे मोहम्मद अरसलान शरीफ हैं और इंजीनियर हमारे ज़ुबैर तैयब हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स गिविंग की, यानी योम तशक्कुर की मुबारकबाद देती हूँ। योम शुक्राना कहिए या योम तशक्कुर कहिए, ये अमेरिका और यूरोप के बहुत से मुल्कों में त्यौहार मनाया जाता है। पाकिस्तान में मैंने देखा है कि बहुत से जो मगरबी त्यौहार हैं उनके जैसे त्यौहार लोगों ने मनाने शुरू कर दिए हैं। मेरी तमन्ना है और ख्वाहिश है कि लोग इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जो कि रंग और नस्ल या मज़हब से मुतालिक नहीं है, बल्कि हर शख्स अपने खुदा का उसकी नेमतों के लिए शुक्रिया अदा करता है। और खुदा का शुक्र अदा करना मेरा ख्याल है इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि तभी हम दूसरे इंसानों की कदर कर सकते हैं जब हम एहसान और शुक्रमंदी जानते हों। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। बता दूं कि इस प्रोग्राम के दौरान आप फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0800-77789। कुछ देर में मैं अरसलान से कहूंगी कि आपको प्रोमो भी सुनवा दें ताकि आपको नंबर नोट करने में आसानी हो। और आज हमारी पहली कहानी एक ऐसी कहानी है जो मुहर्रिक बनी आज के पूरे प्रोग्राम की, क्योंकि ये एक प्रोफेसर हैं मीर जमान लोन साहब, कस्बा हटियां दुपट्टा, पोस्ट ऑफिस गढ़ी दुपट्टा, पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है वहाँ से उन्होंने ये कहानी भेजी थी। और इस कहानी में एक शख्सियत का तस्करा आया है, हमें उनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन किस तरह ये कहानी से कहानी आगे बढ़ी और आज के प्रोग्राम के खुसूसी प्रोग्राम का मौजू बनी, तो ये जानने के लिए कहानी सुनते हैं प्रोफेसर मीर जमान लोन की।
मेरा नाम मीर जमान है, मैं गढ़ी दुपट्टा जिला मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। इस वक्त मेरी उम्र 55 साल है और मैं डिग्री कॉलेज गढ़ी दुपट्टा में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर तदरीस के फराइज अंजाम दे रहा हूँ। मैंने इस मुख्तसर जिंदगी में जो नशेब फराज देखे हैं, वो चाहता हूँ कि उनका मुख्तसर हाल आने वाली नस्लों को बता दूँ, ताकि वो हमारे तजर्बात से फ़ायदा हासिल करके एक मुफीद इंसान बन सके। मैं एक छोटे से गांव लवासी में पैदा हुआ। पैदाइश के बाद मेरी उम्र सिर्फ 3 साल थी कि वालदा माजदा फोत हो गई। वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, ये बात लोगों ने बताई है। कहते हैं कि मेरी वालदा मुझे देखकर तमन्ना करती थी कि मेरा बच्चा इतना हो जाए कि अपने बालों में खुद तेल लगा सके। वो मुझे प्यार से मीरी कहती थी और यही मेरा प्यार वाला नाम लोगों की जुबान पर मशहूर हो गया। अभी 4 साल की उम्र हुई थी कि वालिद साहब एक हादसे में फौत हो गए। मैंने अपने वालदैन को ना देखा ना याद है कि वो कैसे थे। वालिद साहब के बारे में एक ख्वाब सा याद है कि मैं उनके कंधे पर सवारी करता था और मुझे खाने के लिए किशमिश देते थे। वालिद की वफात के बाद चचा जान ने मेरी परवरिश शुरू की। 6 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल में लाकर दाखिल करा दिया। स्कूल में मुझे बहुत आला किरदार वाले असातिज़ा मिले जिन्होंने मेरी अच्छी तरबियत की और इल्म का शौक पैदा कर दिया। इल्म का शौक इस कदर था कि रात को पढ़ता रहता था। स्कूल में मेरी नुमाया पोजिशन थी, हर क्लास में अव्वल आता था। सिर्फ 5वीं क्लास में दूसरी पोजीशन आई तो मैं रोता हुआ घर गया। इसके बाद मैट्रिक तक अव्वल आता रहा। मैट्रिक में स्कूल 12वीं अव्वल आया। FSC में नंबर कम आए क्योंकि इंग्लिश मीडियम की वजह से परेशानी हुई। अभी FSC का रिजल्ट ना आया था कि मुझे बतौर प्राइमरी मदरस तैनात कर दिया गया। मुलाजमत मिल गई, लेकिन मेरा शौक आला तालीम हासिल करने का था, इसलिए मैंने आला तालीम के लिए कोशिश शुरू कर दी। इस सिलसिले में मेरे दोस्त महमूद अहमद ने मेरी हौसला अफजाई की। उन्होंने मेरा दाखिला सऊदी अरब की उमुल कुरा यूनिवर्सिटी में करा दिया। अब मेरी खुशी की इंतहा होगी, मैं अपने आप को इस काबिल न समझता था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरा वसीला लगा दिया। चनाचे 1983 में मुलाजमत छोड़कर सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब में तालीम का बहुत आला मेयार है, जहाँ पर फर्द को अपनी सलाहियतें उजागर करने के मौके मिलते हैं। मक्का बतुल मुकरमा चूँकि दुनिया का मरकजी मकाम है और दुनिया भर के मुसलमान वहाँ रहते हैं, حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے اس دوران مجھے حج موسم میں حاجیوں کی خدمت کرنے کے مواقع بھی ملے. اس طرح مجھے مختلف ثقافتوں کے افراد ملے, مختلف زبانوں کا علم ہوا, خصوصاً عربی زبان بولنے اور لکھنے کا موقع ملا. ہم دوران حج ترجمان کی ڈیوٹی دیا کرتے تھے. میں نے کشمیر کے متعلق مختلف مضامین عربی میں ترجمہ کر کے اخبار و جرائد میں شائع کروائے. امام حرم کا ایک خطبہ کشمیری مسلمانوں کے متعلق ترجمہ کر کے عربی اخبارات اور اردو اخبارات میں شائع کروایا. اس کے علاوہ یوسف کرداوی کی کتاب کا اردو ترجمہ کیا جو کہ اس وقت شائع ہو چکی ہے. 1992 میں سعودی عرب سے تعلیم مکمل کر کے واپس اپنے وطن آ گیا. یہاں مجھے دوبارہ کالج میں ملازمت مل گئی. مجھے اسی کالج میں بطور پروفیسر تعینات کیا گیا جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی تھی. 3 سال کے لیے مجھے لیپا کالج میں بھیج دیا گیا جہاں میں نے لوگوں کے مسائل اور پریشانیوں کا مشاہدہ کیا. وہاں میں آرام سے نہیں بیٹھا بلکہ وہاں کے لوگوں کے لیے میں نے سکول کھولنے کا پروگرام بنایا. 3 سال کے مختصر عرصے میں 12 پرائمری سکول مختلف علاقوں میں کھول دیے. یہ سکول اس وقت ہزاروں بچوں کو تعلیم کی دولت فراہم کر رہے ہیں. پہلا سکول اس وقت کالج بن چکا ہے. وہاں سے فارغ ہونے والے بچے ڈاکٹر اور انجینئر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 8 اکتوبر 2005 میں جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تو میں ایک پہاڑی پر تھا. زلزلے کے بعد اپنے سکول میں گیا جہاں میرے بچے تھے. عجیب حالت تھی, میرے بچے سلامت تھے لیکن بے شمار بچے ملبے میں دبے ہوئے تھے. جو شہید ہو گئے تھے تو ان کو چھوڑ کر ان کی طرف توجہ کی جو ابھی زندہ تھے. تقریباً 20 بچوں کو زندہ ملبے سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا. یہ سکول میرے گاؤں کا سکول تھا جو میں نے نرسری کلاس سے شروع کیا تھا. اس سکول میں اپنی پہلی بیٹی کو داخل کیا تھا جو اس وقت ایم ایس سی میتھ کی اسٹوڈنٹ ہے. زلزلے کے بعد ہم قصبہ اتیندہ بٹہ میں منتقل ہو گئے. یہاں بھی میں نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کا آغاز کر دیا. یہاں ایک پرائمری سکول کھولا جو اپنے گھر میں تھا. 4 سال تک اس کو چلایا, پھر اس کی اپنی عمارت بن گئی. اب یہ سکول سائنس کالج گڑی دوبٹہ کے نام سے مشہور ہے جہاں ہزاروں بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سکول کے ساتھ ایک مسجد کی بنیاد رکھی. یہ مسجد اس وقت ایک بڑا ادارہ بن چکی ہے جہاں بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اور درس و تدریس کا ذریعہ ہے. پوری آبادی کو نماز پڑھنے کی سہولت ہے. جمعۃ المبارک کے ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے. خطابت کے فرائض بھی میں خود ادا کرتا ہوں اور کسی قسم کی اجرت نہیں لیتا بلکہ جیب سے مسجد کی تعمیراتی ضروریات ادا کرتا ہوں. لوگوں کی بنیادی ضرورت بھی پوری کرنے کی کوشش ہے. اس سلسلہ میں مسجد کے ساتھ ایک کنواں کھودوایا ہے جہاں سے ٹھنڈا اور شفاف پانی پینے کے لیے ملتا ہے. میری زندگی کا مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. تعلیم کے ذریعے لوگوں کو آگے بڑھنے اور شعور حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے جتنے سکول کھولے وہ ریڈ فاؤنڈیشن کے تعاون سے چل رہے ہیں جہاں تعلیم بچوں کے لیے مفت دی جاتی ہے. ان کو کتب, کاپیاں, بیگ اور وردی بھی دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ نوجوان تعلیم یافتہ بچوں اور بچیوں کو روزگار بھی مل جاتا ہے. اس وقت ہزاروں نوجوان ان سکولوں میں تدریس کا کام کر رہے ہیں. میری خواہش ہے کہ میرے علاقے کے لوگ تعلیم کے میدان میں آگے آئیں اور جہالت سے لوگوں کو نکالیں, کیونکہ جہالت تمام مسائل کو جنم دیتی ہے. تعلیم سے معاشرہ ترقی کرتا ہے, پریشانیوں کا ازالہ ہوتا ہے. آدمی نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہوتا ہے بلکہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کی قابلیت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسرے انسانوں کی خدمت کر سکیں اور ان کے دکھوں کا مداوا کر سکیں.
تو ہوا ہے کنا
بھئی, کچھ تو کہیے نا.
کہو نہ کہو,
کچھ تو چاہو.
کم میں بگوش نا,
کچھ کہیے نا.
لکھو سے ہوا ہے.
کہو نہ کہو,
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں. نمبر نوٹ کر لیجیے, 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے. 0800-777-89. پروگرام ہے,
تو سمین پروگرام کا آپ نے نوٹ کر لیا ہوا نمبر میں ایک دفعہ پھر بتا دوں 0800-77789. اور ہمارے مہمان جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ایک اور کہانی ہم آپ کو سنوائیں گے, لیکن ان کا ذکر لون صاحب کی کہانی میں آیا تھا, محمود احمد صاحب, جو کہ ان کا تعلق بھی کشمیر سے ہے. اور میرا خیال ہے آواز سن رہے ہوں گے. محمود احمد صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی بالکل آ رہی ہے.
السلام علیکم اور بہت شکریہ
وعلیکم السلام
پروگرام میں آنے کا.
آپ کا
تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ پہلے ہم تھوڑا سا جو ریکارڈڈ ہم نے کہانی آپ کی جو کی ہے, آپ کے جو دوست ہیں جن کو آپ نے بلکہ ایک طرح سے تعلیم دلوائی, مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کیسے انتظام کیا ان کی تعلیم کا, یعنی اسکالرشپ انہیں کس طرح دلوائی آپ نے, تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں؟
میرے جاننے والے دوست وہاں پہ پہلے سے زیر تعلیم تھے, ان کے پاس میں نے ان کے کاغذات بھجوائے اور انہوں نے اپلائی کیا. وہاں اس وقت کافی باہر کے طلبا کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی, اس طرح ان کا ایڈمیشن ہو گیا. اور اس میں بس ایک تھوڑی سی ہماری کوشش تھی, اس کے نتیجے میں ان کا راستہ کھل گیا.
اور دیکھیں ان کی زندگی بدل گئی اس کی وجہ سے بالکل. تو چلیے اب ہم آپ کی کہانی سنتے ہیں, اور ظاہر ہے کوئی لکھی ہوئی کہانی نہیں تھی, آپ سے تھوڑی سی باتیں ہوئی تھیں, وہی میں سنواتی ہوں اپنے سننے والوں کو.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353, یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437, نئی دلی 110011, بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم, آئی ایم جمیلہ حبیب. I have just completed BSc from Reed Foundation School and doing my Masters in Mathematics from Qaid e Azam University, Islamabad. When I got admission in Reed Foundation School, I was a bit nervous that how I will be able to catch up with my fellows who have been studying in English medium schools from the start. But just after 2 years, I stood in top 15 in high school examination among 42,000 students. And now, alhamdulillah, I obtained first position in BSc. All the credit goes to my teachers. I want to teach at my village after completing my education.
Assalamu alaikum. I'm Sidra from Reed Foundation School, Muzaffarabad. I would like to share the wonderful work Reed is doing. The journey started in 1994 with 25 children and only one teacher. The growth in a short span of time has been incredible, even for its founders.
My name is Hassan Akhtar. I want to become a doctor.
I like teaching.
I want to be a doctor.
I am Muhammad Ali. I want to become a computer engineer.
جب ان کے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ کینسر میں مبتلا تھے. اس کے بعد بچے پڑھانے بہت مشکل تھے. یہ ریڈ فاؤنڈیشن کی وجہ سے میرے بچے اس مقام پہ پہنچے. یہاں پر آج جو لوگ ہیں 50 60 हजार सैलरियां ले रहे हैं, उनके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हीं के मुकाबले में मेरे बच्चे भी रीड फाउंडेशन में पढ़ते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। ये इदारा पूरे एक साल की चीजें इन्हें पहले ही शुरू से दे देते हैं जबकि क्लासेस शुरू होती है।
I have been sponsoring a bunch of orphan children. Reed Foundation enabled me to select those children. Every year I get their report cards, I get to see their pictures, I get to see that they're growing up well, I get to see their percentages, so I know that they are working hard and they are progressing. They have now moved from primary level to middle level and I hope that they continue to perform just as well and I hope they continue to grow into good human beings.
In our journey of giving hopes, we are not alone. More than 8,000 individuals, businesses and institutions from different parts of the world are with us.
तो सामने ये कहानी तो थी उन कोशिशों का नतीजा जो मुख्तलिफ आवाज़ों में आपने सुना जो रीड फाउंडेशन की थी, मगर खुद रीड फाउंडेशन का आगाज कैसे हुआ ये सुनाते हैं महमूद अहमद साहब।
मैं एक ऐसे गांव में पैदा हुआ जिला मुजफ्फराबाद के जहाँ पे मेरे वाले साहब जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे। तो मुझे जो पहला स्कूल जहाँ मैंने दाखिला लिया वो मुझे दो दिन वो पैदल चल के एक आदमी मुझे उठा के ले जाता था जहाँ मेरे वाले साहब की पोस्टिंग थी लीपा में, और जहाँ जहाँ उनकी ट्रांसफर होती रही वहाँ वहाँ मेरे स्कूल रहे और मैं अपनी अम्मी से भी दूर रहा तालीम के सिलसिले में। छोटी बचपन की उम्र से मैट्रिक करके कराची चला गया। उस जमाने में कराची में तालीम एक बड़े इम्कानात होते थे, दिन को काम करते थे शाम को पढ़ लेते थे। मैं भी दिन को मुख्तलिफ काम करता रहा और पढ़ता रहा। तो बाद में मैंने PIA ज्वाइन की और फिर बाद में मैंने ये कारोबार किया और ये फैसला किया कि अब हमें सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। चुनाचे मैंने 1994 में मैंने अपने चंद दोस्तों के साथ हमने मिलकर फैसला किया कि हम अपने माशरे के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारी जो बहुत सारी मुश्किलात हैं माशरे की वो तालीम के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी अगर तालीम बेहतर नहीं होगी तो फिर मसाइल हल नहीं हो सकते। तो हमने फिर बहुत छोटा सा आगाज किया। हमने एक उस्ताद और 25 बच्चों से एक देहात में आगाज किया। हर साल एक क्लास और आती गई और हम देहातों में स्कूल कायम करते गए। तो इस वक्त हमारे 340 तालीमी अदारे हैं जिनमें से 27 कॉलेज की सतह पे हैं, 70 हाई स्कूल हैं और बाकी मिडिल और प्राइमरी स्कूल हैं। और वो जो एक उस्ताद था अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 के करीब उस्ताद हैं हमारे पास और 90,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनमें से 8,000 ऐसे यतीम बच्चे भी हैं कि जिनका शायद अगर हम सहारा ना बनते तो वो तालीम कभी भी हासिल न कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से डॉक्टर इंजीनियर और मुख्तलिफ प्रोफेशंस में बच्चे गए हैं और सोसाइटी के अंदर वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो एक पूरी यानी एक लिहाज से ये एक पूरी गुज़िश्ता 20 साल लगा के हमने इस काम को डेवलप किया है और यही पेश नज़र चीज़ थी कि हम अपनी सोसाइटी के लिए काम करें। हमारी सोसाइटी में लोग शिकायतें बड़ी करते हैं लेकिन अपने हिस्से का काम करने के लिए बिलमूम तैयार नहीं होते। और हम मैं भी उन लोगों से ताल्लुक रखता हूँ जो ये सोचते हैं कि हमें अपने हिस्से की शमा जलानी चाहिए, इसी से जो है वो अंधेरे दूर होंगे।
ज़ाहिर है आपका बहुत ही ज़बरदस्त काम है। तो ये आपने कहा कि दोस्तों के साथ मिलकर शुरू किया, तो इसके लिए स्कूलों के लिए सरमाया कहाँ से आया आपके पास?
हमने मॉडल ऐसा बनाया, शायद अल्लाह की मशीयत ये थी, हमें उस वक्त इतनी ज़्यादा मालूमात भी नहीं थी। हमने ज़्यादातर स्कूल बहुत ही कम वसाइल से शुरू किए। मसलन हम शुरू में स्कूल हम 25,000 रुपये से शुरू करते थे और इब्तदाई जो चंद हमने स्कूलों के लिए पैसे जमा किए अपने कुछ जानने वालों से दोस्तों से तो वो स्कूल शुरू किए। तो वो बड़ा आसान मॉडल था। हम एक बस्ती में 25 से 30 बच्चे तलाश करते थे 4 से 5 साल की उम्र के, और उसके बाद एक 100 रुपया हमने फीस रखी थी और पहले महीने से ही वो स्कूल जो है वो एक लिहाज से सस्टेनेबल हो जाता था, और फिर अगले साल एक नई क्लास आ जाती थी, उसके दाखिले की फीस से नई चेयर्स खरीद लेते थे और एक और उस्ताद रख लेते थे। तो इस तरह से एक सस्टेनेबल मॉडल जो है बन गया, और कम वसाइल से ही हमने देहातों में, चूंकि ज्यादा खर्चा भी नहीं आता था, हम एक उस जमाने में 94 में 300-400 रुपए में 3-4 कमरे का मकान मिल जाता था, और हम कोई 10-15 हजार रुपए का उसमें फर्नीचर, कुछ 30 चेयर्स और कुछ दफ्तर के लिए चेयर्स लिए लेके डालते थे, एक टीचर को रख के उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग करते थे। तो इस तरह से हमारा काम शुरू हो गया और रफ्तार रफ्तार वो स्कूल फिर ग्रो होना शुरू हो गया, और वक्त के साथ साथ जो है वो निज़ाम हमारा बढ़ता चला गया, फिर हम जरा ज्यादा अगली सतह पे जाके काम करना शुरू हो गया। इस वक्त हमारे 100 के करीब स्कूलों की बिल्डिंग्स अपनी हैं। फिर वक्त के साथ जो है हमने पहला ऑर्फन की स्पॉन्सरशिप का निज़ाम शुरू किया, तो उसके जरिए से जो है वो लोगों ने हमारे साथ तावन करना शुरू किया कि जो एक यतीम बच्चे के लिए उसकी बुक्स, स्टेशनरी, उसकी फीस, उसकी बाकी चीज़ों के लिए लोग हमें स्पॉन्सरशिप कर देते थे। तो ये इंडिविजुअल्स के जरिए से, फिर एक इरशाद हकानी साहब थे, उनसे मैंने बात की, उन्होंने उस पर एक कॉलम लिख दिया, उसके लिए बेशुमार लोगों ने बच्चे स्पॉन्सर करना शुरू कर दिए। तो इस तरह से ये निज़ाम आगे बढ़ता चला गया। फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने हमें बिल्डिंग्स बना के देना शुरू कर दी। तो इस तरह से लोगों ने काम देखा और काम देख के उसको सपोर्ट करना शुरू किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारा एक अच्छा सस्टेनेबल सिस्टम है, और हम कोशिश ये करते हैं कि जो शहरों में 5,000-6,000 में जो तालीम है, वो देहातों में हम 800-1,000 रुपये में, जो कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आती है, उस पर लोगों को हम वो तालीम फराहम कर देते हैं, और साथ इस तरह से स्कूल अपना खर्चा भी खुद निकाल लेता है, साथ जो स्कूल फीस लेता है उसमें से 10% वो हेड ऑफिस को कंट्रीब्यूट करता है, जिससे हमारे जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो चलते हैं, और साथ जो है उनका पूरा मॉनिटरिंग का पूरा सिस्टम है, असेसमेंट का पूरा सिस्टम है, वो सारा चलता है। तकरीबन 150 के लगभग लोग हमारे हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिसेज में काम करते हैं, और हमारी वो जो टीम है, हम लोग वॉलंटियर काम करते हैं, लेकिन अब एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है जो इसको चला रही है। मैं खुद इसका चेयरमैन भी रहा हूँ, इसका CEO भी रहा हूँ, फिर एक लेवल पर जाके मैं फेज आउट हो गया, और अब हमारे एक प्रोफेशनल टीम है जो हमारे ही जो इब्तदाई लोग हैं उन्हीं में से डेवलप हुई है, उनको हमने 100 से ज्यादा लोगों को मास्टर्स करवाया, उनसे में से एक लीडरशिप स्किल्स उनमें डेवलप की, अब वही लोग इसको चला रहे हैं।
मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक डायनेस्टी वरना बना दी जाती है तालीम में भी, कि जिसने शुरू किया, जिसके आप फाउंडर थे, तो फिर उन्हीं का ख़ानदान जो है, उन्हीं के बच्चे या उन्हीं के ख़ानदान के लोग जो हैं गवर्निंग बॉडी जो होती है उसमें भी आ जाते हैं, और उनकी अथॉरिटी होती है। लेकिन आपने खुद ट्रेन किए लोग जो कि आप लोगों का काम संभाल सकें, और ये बहुत ही बड़ी मिसाल है। क्योंकि आज हम थैंक्स गिविंग के हवाले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सोचिए अपनी ज़िंदगी, मसलन जब आप कराची में रहे एक नए शहर में जाके, तो उसमें कोई ऐसा तकलीफ़ का लम्हा जब आपको लगा हो कि ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकेगी, और फिर कोई बहुत ही अच्छा लम्हा आपकी ज़िंदगी का जब आपने देखा कि जो कुछ आप चाहते थे आपको मिल गया, कोई ऐसी कहानी हमें सुनाइए आप।
देखिए, मैं तो जैसे मैंने कहा, मेरे वालिद साहब डिस्पेंसर थे, तो हमने गुर्बत में ही एक लिहाज से आँख खोली थी, और शुरू से ही मेरे अंदर ये जज्बा था कि मैंने अपने वालिद साहब के लिए बोझ नहीं बनना, बल्कि कराची भी मैं इसीलिए गया था कि मैं कुछ काम भी करूं और साथ में पढ़ता भी रहूं। कराची में जाके बहुत तकालीफ भी उठानी पड़ी, और मसलन मैंने अखबार बेचा है, मैंने होटल में तंदूर में रोटियां लगाई हैं, मैंने छोटे छोटे काम किए, मेहनत मजदूरी की है, लेकिन ये है कि उससे जो मुझे लर्निंग हुई है ज़िंदगी की, वो मैं बच्चों को शेयर करता हूँ, और हमें अपने माजी पे फख्र है, और हाथ से काम करना एक बड़ी एजाज की बात होती है। तो बाकी जो है ना, जब से मैंने ये सोचा कि हर आदमी माशरे में जो अपनी जात के लिए सोचता है, अगर आप दूसरों के लिए सोचना शुरू करें तो शायद अल्लाह ताला उसका बेनिफिट अल्टीमेटली आपको भी पहुंच ही जाता है। मैंने जब ये फैसला किया कि मैं अब मैनेजमेंट से अलग हो जाऊं, जब मैंने अपने साथियों को बताया कि मैं अगले साल फलां दिन 30 जून को मैं जो है ना अब CEO नहीं रहूंगा, और एक साल में आप कोई इसका इंतजाम करें कि हम में से किसी पे हम मुत्तफिक हो जाएं कि कौन سی او، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ دنیا کے جو قبرستان ہیں وہ ناگزیر انسانوں سے بھرے ہوئے ہیں، ابھی کبھی ان میں سے ہر ایک اپنے وقت میں ایسا تھا جس کے بغیر نظام نہیں چلتا تھا، لیکن اگر میری موجودگی میں میری ٹیم سنبھالے گی تو میں ان کو کوئی سپورٹ دے سکوں گا، لیکن مجھے بعد میں اس کا ایک بینیفٹ ہو اور سسٹمز بن جائیں. اور ایک دفعہ میں نے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ بہت اچھے سسٹمز بنے میرے ادارے میں، ہر چیز کے پروسیجرز ہوں اور ہر کام ایک طریقے کے ساتھ ہو رہا ہو. تو اس وقت اس نے کہا کہ اصل میں جب تک فاؤنڈرز موجود ہوتے ہیں وہ خود ایک قانون ہوتے ہیں، تو جب وہ نکلتے ہیں تو اس وقت پھر سسٹم بننا شروع ہوتے ہیں. تو اسی وقت میرے ذہن میں یہ ذہن میں آیا کہ مجھے اب سوچنا چاہیے کہ ایک میں ٹیم جو ہے وہ پلیس کر دوں. تو خیر میں نے جب اس پہ عمل درآمد کر لیا تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کے بعد اس کے نتیجے میں اس سے بھی بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ آدمی ان کاموں پہ فوکس کر سکتا ہے جو کہ جب آدمی مینجمنٹ میں ہوتا ہے تو وہ دراصل انتظامی امور اور فائر فائٹنگ میں ہی زیادہ لگا رہتا ہے، لیکن جب وہ اس کے پاس مینجمنٹ سے وہ گورننس میں آتا ہے تو وہ ان کاموں پہ فوکس کر سکتا ہے جس پہ عموم میں آدمی کے لیے آدمی کے پاس جن کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا. تو چنانچہ میں آج کل جو ہے وہ اس پہ گزشتہ 2-3 سالوں سے کام کر رہا ہوں کہ بچوں کے اندر کریکٹر کیسے پیدا ہو، کریکٹر ایجوکیشن. اور ہماری ایجوکیشن میں ایک بہت بڑا اس وقت خلا یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے انسان تو پیدا کرتی ہے لیکن وہ باکردار انسان نہیں پیدا کرتی، اور وہ نالج تو رکھتے ہیں لیکن اس نالج کے اوپر وہ پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے. اور انشاءاللہ میں اب اپنے ادارے میں ان چیزوں میں کنٹریبیوٹ کروں گا کہ جس میں عموم میں آدمی مینجمنٹ میں رہتے ہوئے نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتا. میں نے کوشش کی ہے کہ جو پوٹینشیل والے لوگ ہیں ان کو نیچے سے ڈیولپ کیا جائے. تو میں نے جیسے آپ نے کہا کہ میں نے 2-3 ویلیوز بنائی تھیں، الحمدللہ اس کے نتیجے میں مجھے بڑی سپورٹ ملی ہے. ایک تو میں نے یہ ویلیو شروع سے بنائی تھی کہ اس کام کو میں ولنٹیئرلی کروں گا، اور دوسری ویلیو یہ بنائی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا. تو یہ ایک مشکل فیصلہ تھا لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں مجھے بڑی سپورٹ حاصل ہوئی ہے، اور چھوڑنا بھی میرے لیے بڑا آسان ہوا. دوسرا، میں نے شروع سے ہی یہ کوشش کی کہ کسی اپنے، ظاہر ہے 5,000 لوگ اب ادارے میں کام کرتے ہیں، کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کو اس میں نہ لاؤں، چونکہ ان کو لانا آسان ہے لیکن جب آپ ان کو فارغ کریں تو وہ اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے.
صحیح کہہ رہے
ہیں. تو پھر لیکن اس کا مجھے بہت بینیفٹ ملا ہے، یعنی میں نے بالکل پوٹینشیل، ظاہر ہے اگر میں خود کسی میرٹ پہ کام کرنے کا عادی ہوں تو جو میرے ساتھی ہیں انہوں نے بھی پھر آگے میرٹ پہ ہی کام کرنا شروع کیا. تو ممکن ہے انسان ہیں، کچھ چھوٹی موٹی کوتاہی نیچے ہوتی بھی ہو، لیکن یہ کہ مجموعی طور پہ ہمارا کام کا کلچر بنا ہے اور جو کام کے لوگ تھے ان کو ہم نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میری پاس جو ٹیم ہے، جو ان میں سے مثلا ہمارے جو پہلے استاد ہیں جنہوں نے 1994 میں پہلے استاد کی حیثیت سے جوائن کیا تھا، اس وقت وہ ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ کے جی ایم ہیں، اور وہ پروموشن سے نہیں آئے، وہ میرٹ پہ آئے ہیں آگے بڑھ کے.
کیا نام کیا ان کا، آپ کے استاد کا، پہلے استاد جو تھے؟
ان کا نام ہے عبید الرحمان، وہ ہمارے اس وقت جی ایم ہیں پروکیورمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے. اس طرح سے جو گویا کہ جو آغاز سے جو لوگ ہمارے ساتھ چلے، پھر انہی میں سے ہم نے ٹیم ڈیولپ کی، ان کو ہم نے پروفیشنل بنایا، وہ جو کمٹمنٹ والے لوگ تھے ان کو ہم نے انکریج کیا، ان کو ان کی تعلیم کے اندر جو کمیاں تھیں وہ دور کی ان کو. تو الحمدللہ انہیں نے پھر اس تنظیم کو جو ہے نا وہ آگے بھی بڑھایا.
آپ نے بتایا 8,000 یتیم بچے جو ہیں آپ کے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے بہت سے ہزاروں کی تعداد میں نکل چکے ہوں گے پہلے. کوئی ایک بچہ بتائیے جس کی زندگی پہ آپ کو فخر ہے. فخر تو آپ کو بہت سی زندگیوں پر ہوگا، لیکن کسی ایک زندگی کی کہانی سنائیے جو کہ بالکل ناممکن میں سے آپ نے اسے پھر کسی مقام پہ پہنچایا تعلیم نے.
ایک بچہ جیسے ابھی ہمارا، جس کے باپ بھی فوت ہو گئے، بعد میں اس کی ماں بھی فوت ہو گئی، تو وہ یتیم و یسیر بچہ تھا. تو ابھی جو پچھلے سال ہمارا انٹر کا نتیجہ آیا تھا، تو اس نے آزاد کشمیر میں 60,000 کے لگ بھگ بچے امتحان میں اپیئر ہوتے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ بورڈ ٹاپ کیا. وہ اب اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں लाहौर में जो है वो पढ़ रहा है, तो जाहिर है ऐसे बच्चों से जब आप मिलते हैं कि जिनकी जिंदगी में अगर आपने उनकी उंगली ना पकड़ी होती तो शायद वो आगे ना बढ़ सकते।
तो महमूद अहमद साहब से ये बातचीत तो रिकॉर्डेड थी, महमूद अहमद साहब मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। आपकी एक कहानी बहुत ही, मतलब मैंने रिकॉर्ड भी की थी लेकिन अभी मैं सुन रही थी तो मुझे कुछ नाकाबिल यकीन लगता है कि ये सफ़र एक तनह अकेले शख्स ने शुरू किया, कोई एनजीओ नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं और कोई ग्रुप भी नहीं था शुरू में, तो क्या बहुत मुश्किल सफ़र था या जिस आसानी से आपने कह दिया उतना ही आसान था?
मैं तो समझता हूँ कि हमारी कोशिशें इसमें कम थी, अल्लाह का फजल ज्यादा था, और यानी हम एक कदम जो ही आगे बढ़ते तो शायद अल्लाह चार कदम हमारी तरफ आता था। तो कोई मुझे कभी किसी मरहले में मुश्किल नहीं पेश आई, बस ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आदमी इखलास के साथ शुरू करता है किसी काम को और उसमें अपने जाती फायदे से बालातर होकर करता है तो फिर उसके लिए मुश्किलात आसान हो जाए। तो मुझे तो कोई खास इतनी मुश्किल नहीं दरपेश आई, ये है कि मैं समझता हूँ कि विजन बड़ा होना चाहिए और विल इंसान में होनी चाहिए और फिर स्ट्रेटेजी उसकी दुरुस्त हो, नियत का इखलास हो तो काम जो है वो आसानी के साथ हो जाते हैं।
वैसे एक काम मैंने अपने जिम्मे लिया था, सामीन को बता दूं कि मैंने महमूद साहब से कहा था कि आप अपनी कोई तस्वीर दे दीजिए क्योंकि हम अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, तो इनके इदारे के बारे में तो मैंने लगा दिया लेकिन बावजूद कोशिश के मुझे उनकी फ़ोटो नहीं मिल सकी, क्योंकि इनका ख्याल था कि शायद कहीं फेस उस पर पड़ी हो जो वेबसाइट है या फेसबुक पे। मसला ये है कि मुझे खुशी भी है इस बात की, अच्छी बात भी है कि अगर फ़र्द की तस्वीर की जगह इदारे की तस्वीर हो। वैसे हमारे बहुत से सुनने वाले आपको देखना चाहेंगे महमूद अहमद साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपनी तस्वीर आप हमें ईमेल कर दें ताकि हम अपनी फेसबुक पर उसको डालें ताकि आपको लोग देख सकें जिसकी आवाज़ सुन रहे हैं। अच्छा, कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं, राजा जाहिद हैं मुजफ्फराबाद से। जी राजा जाहिद साहब।
अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम सलाम राजा साहब।
जी राजा जाहिद बल्ला बाड़िया मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई महमूद साहब जैसी शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। एक तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ यकीनन वो इस इलाके को जानते होंगे, यूनियन काउंसिल डन्ना की चीली है, तो वहाँ पे आपकी ये ब्रांच मौजूद नहीं है, इससे थोड़ा 10-20 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे आपकी ब्रांचेस फैली हुई है। तो एक तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यहाँ आपने इतनी बड़ी काविश की और इतनी बड़ी कोशिश से ये यतीम बच्चों वाला सिलसिला शुरू किया, उनको एडमिशन मिला, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग का कोई आप एक सेटअप अगर कायम कर लें खासतौर पर बच्चियों के लिए, क्योंकि जो एजुकेटेड बच्चे हैं वो तो चले अपना सिलसिला तालीम से जोड़ने के बाद कोई सर्विस की तरफ जाएंगी, लेकिन जो अनपढ़ रह गई हैं देहातों में तो उनके लिए अगर ये कोशिश आप आइंदा मुस्तकबिल में कहीं कर लें तो मेरा ख्याल है वो भी एक बहुत सदका जारिया होगा।
तो राजेश साहब हमारे साथ रहिए। जी महमूद अहमद साहब।
जी ख्वाब तो हमारे बड़े हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग हमारी सोसाइटी की बहुत ही बुनियादी जरूरत है, हमने अपने मनसूबा अमल में इसे रखा हुआ है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इसके लिए हमें जो जरूरी वसाइल हैं वो फराहम फरमाएं। तो हम तो यूनिवर्सिटी से लेके टेक्निकल एजुकेशन तक हर सिंथ में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस पर भी हमने काम शुरू किया हुआ है कि जो हमारी बुनियादी इस वक्त तालीम है उसी उसके साथ इंटीग्रेटेड टेक्निकल एजुकेशन को भी हम प्रमोट करना चाहते हैं। इसमें भी एक बुनियादी काम हमने किया है, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इस शोबे के अंदर भी हम काम करेंगे और इन्होंने जो तवज्जो दिलाई है बिल्कुल बजा है। और बतौर खास जो बच्चों की टेक्निकल एजुकेशन है वो हमारे लिए बहुत ही अहम है। मैं पिछले मुद्दत में एक मैंने इसका मंसूबा बनाया और एक खातून से मैंने शेयर किया कि ये चीजें हैं जो उसमें मैंने कहा था कि बच्चों को हम जो है वो बिजली का काम सिखाएं, उनको सब्जियां लगाना सिखाएं, उनको बागबानी सिखाएं, उनको जानवरों की परवरिश करना सिखाएं, एक पूरा इंटीग्रेटेड एक हमने अपनी सोसाइटी के मुताबिक एक उनकी फनी तालीम और टेक्निकल एजुकेशन की बात की थी। तो वहां मैंने कहा कि बच्चियों को जो जब बिजली के काम के मुतबादल बच्चियों के लिए लिखा था कि उनको कोई उनसे मुतालिक चीज सिखाएं, तो उस खातून ने मुझसे बड़ी बात कही, उसने कहा कि आप कम से कम बच्चियों को तो बिजली का काम जरूर सिखाएं।
आप यकीन करें ये खातून भी आपसे यही कहने वाली थी, मैं भी ये कहने वाली थी कि बच्चियां क्यों नहीं हुई।
उन्होंने, मैंने कहा कि क्यों, तो कहती हैं कि मर्दों के पास तो टाइम नहीं होता और एक छोटा सा स्विच खराब होता है और उसी की वजह से हादसा हो जाते हैं।
जी हाँ,
तो लिहाजा आप बच्चियों को बिजली का काम तो जरूर सिखाएं। तो मैं बड़ा कन्विंस हुआ उनसे, तो दो तीन दिनों के बाद उनका टेलीफोन आया मुझे, वो कहने लगी कि एक काम बच्चों को भी सिखाएं। मैंने कहा वो क्या सिखाएं, कहने लगे बच्चों को बटन लगाना सिखाएं, बच्चों को इस्त्री करना सिखाएं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये काम औरतों ही का कर लेंगे।
बिल्कुल, या तो माँ करे या बहने करे।
हमारी जरूरत है टेक्निकल एजुकेशन, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम इसमें इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। हमारे विजन में तो ये है कि हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में एक पॉलिटेक्निक होना चाहिए, तो अब दुआ करें कि हम जल्दी इस पे अमल दरामद कर सकें।
वैसे उन्होंने जो बात कही थी खातून ने, मैं उनसे ही कहूंगी खवातीन से कि हम खुद भी अपने घर बेटों को और अपने भाइयों को स्पॉइल करते हैं, और हमें चाहिए कि अपने घर में जब हम, हमारी बेटी अगर कपड़े इस्त्री करके स्कूल को जाती है तो उसकी उम्र का जो बेटा है उसको भी अपने कपड़े खुद धोने या इस्त्री करने चाहिए। तो इसमें जिम्मेदारी घर वालों की भी है, सिर्फ स्कूलों की नहीं है। अच्छा, आपसे महमूद साहब, इन्होंने पूछा था, राजा जाहिद ने अपने इलाके का नाम लेके, कि उसके आसपास कोई आपके ब्रांच नहीं है तो उसका?
इनके गन्ने के इलाके में हमारे चंद स्कूल हैं, अगरचे आजाद कश्मीर के ये जो 2005 का जलजला आया था इसमें हमारे 138 स्कूल तबाह हो गए थे। उसके बाद हमारे बोर्ड ने ये फैसला किया था कि अभी हम नई एक्सपेंशन नहीं करेंगे, बल्कि कंसोलिडेशन और साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो आज़ाद कश्मीर के तूलो अर्थ से हमें मुसलसल ये मुतालबात आ रहे हैं कि हमारे इलाके में स्कूल खोलिए, हमारे इलाके में स्कूल खोलिए। तो हमारे बोर्ड ने अब ये एक लिहाज से अब एक ज्यादा एहतियात के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। इससे पहले हम खुद ही जो मैनेजमेंट वो फैसले करती थी, इस वक्त हमारा बोर्ड ने स्कूल खोलने का फैसला करता है। तो इंशाल्लाह इन्होंने, इनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि वहाँ हमारा ऑफिस है मुजफ्फराबाद में, लोहर छत्तर में, वहाँ ये चले जाएं। हमारे रीजनल हेड हैं, उनको अपने जो इलाके की जो भी एक फिजिबिलिटी है और इन्फॉर्मेशन फ्राहम करें, और हम मुस्तकबिल में इसका जायजा ले लेंगे कि वहाँ किस हद तक हमारी, लेकिन ये अमूमी तौर पर है कि हमारे पास स्कूल खोलने के मुतालबात बहुत ज्यादा हैं, और हर साल हम चंद स्कूलों के लिए ही वसाइल नए स्कूलों के लिए फराहम कर सकते हैं।
वैसे मैं यहाँ ये कहूंगी महमूद साहब के लोगों को खुद भी आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अभी आपने कहानी में सुना कि हमारे जो लोन साहब थे उन्होंने खुद स्कूल खोला जिसके लिए मुआवनत फराहम की, मतलब कहीं कोशिश शुरू करनी चाहिए, उसके बाद रीड फाउंडेशन आपकी शायद मदद ज्यादा बेहतर तौर पर कर सके। अच्छा, दो कॉलर हमारे साथ हैं, एक तो साकिब शमीम है इस्लामाबाद से। जी साकिब शमीम
जी।
जी वालेकुम
माशाल्लाह जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है
जी।
महमूद साहब को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी खिदमत पर अंजाम दी है
जी।
तो ये जो इनकी कामयाबी है इसके पीछे यकीनन किसी का हाथ होता है, क्योंकि कोई आदमी भी कोई काम करता है तो उसको उस काम पे आमादा करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए कोई ना कोई शख्सियत जरूर होती है।
वैसे
तो दूसरा मेरा सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में इनका कोई स्कूल है कि नहीं, या मुस्तकबिल में इनका कोई इरादा है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी इनके स्कूल की शाखें खोली जाए? शुक्रिया
जी। शुक्रिया साकिब साहब जी।
बस जी, माँ बाप ही दरअसल बुनियादी तरबियत भी करते हैं और वही ये चीज पैदा भी करने की कोशिश करते हैं कि हमारी औलाद के अंदर वो बुनियादी सलाहियत पैदा हो कि वो सोसाइटी के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो हमें भी बतौर खास वालिद साहब इस पे मुसलसल मतवजे करते रहे हैं, और वालदा ने भी हमारी तरबियत में कोई कसर उठा नहीं रखी है। बाकी नॉर्दर्न एरिया में भी हमारे चंद एक स्कूल हैं, अब हमने स्ट्रेटेजिकली वहाँ ज्यादा फोकस करना शुरू किया है। गिलगित शहर में हमारे चंद स्कूल हैं, इसके अलावा हमारा अस्तौर में हमारा स्कूल है, और इस साल हमने प्लान किया है कि इंशाल्लाह जो वहाँ चलास का जिला है वहाँ हम दो तीन स्कूल नए शुरू करना चाहते हैं। और नॉर्दर्न एरिया भी इस लिहाज से, तालीम के लिहाज से, अब हम समझते हैं कि वहाँ पे हम एक्सपेंशन करें, और हुकूमत के साथ भी मिलके कुछ इस वक्त हम प्रोजेक्ट्स बतौर खास उन अजला में हम शुरू करना चाहते हैं जो वहाँ एजुकेशन में बहुत ही पीछे रह गए हैं, जिसमें बतौर खास जो जो
چلاس کا ضلع ہے اور اس کے داریل اور تانگیر جیسے علاقے ہیں جہاں ملک میں پاکستان میں بچیوں کے اسکول جانے کی جو سب سے کم شرح پائی جاتی ہے. تو ایسے علاقوں میں اور پھر ان کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو یہ جو اکنامک کوریڈور ہے اس کے بالکل دہانے پہ یہ جو ہے وہ وہاں سے گزرتی ہے, اس کے بالکل ساتھ ہیں یہ علاقے. تو یہاں پہ تعلیم کا فروغ ہونا بے حد ضروری ہے. ناردرن ایریا کے بعض علاقوں میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو غزر اور آپ کو جو ہے وہ ہنزہ جیسے علاقوں میں آپ کو بہت اچھا انوائرمنٹ,
کیونکہ وجہ اس کی آغا خان فاؤنڈیشن ہے محمود صاحب, یہ وہ علاقہ ہے بہت بڑا کام کیا.
لیکن یہ جو بیلٹ جہاں پہ ابھی تک کام نہیں ہو سکا تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس علاقے کو ہم فوکس کریں.
بالکل,
اور انشاءاللہ ہم حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اس میں, اور وہاں ہم بطور خاص بچیوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی پروگرام سیریسلی شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں بچوں کو بھی تعلیم کے بہتر مواقع مل سکیں اور وہ بھی معاشرے کے اندر اور وہاں کی سوسائٹی کے اندر کوئی بہتر رول ادا کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں.
بہت ہی افسوسناک آپ کو فرق نظر آتا ہے جب آپ ہنزہ جاتے ہیں اور جب آپ گلگت کے خاص طور سے گاؤں وغیرہ دیکھتے ہیں, نہ تو وہاں اسکول ہے نہ کوئی فیسلٹیز ہیں. تو ایک اچھی جو تنظیم ہوتی ہے جیسے کہ آغا خان فاؤنڈیشن ہے, اور پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ریٹ فاؤنڈیشن نے اگر یہ ذمہ لیا ہے تو یقینی طور پر پھر وہ علاقے بھی برابر آ سکیں گے جس طرح کی ہنزہ میں 100% تقریباً ایجوکیشن ہے اور جس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ ارم اشرف ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے. جی ارم اشرف, ارم اشرف, ان کو ارسلان, یہ ان کی فون یا تو ڈسکنیکٹ ہو گیا یا آواز نہیں آ رہی ہے ان کو. اچھا, مرید خان ہے ہمارے ساتھ میاں والی سے. جی مرید خان, مرید خان اپنا ایک تو فون بند کر لیجیے پلیز. اچھا, میرے خیال ہے مرید خان کو بھی آواز نہیں آ رہی. ہم چل, محمود احمد صاحب میں آپ سے ایک جاوید کو لے لیتے ہیں میرپور سے, پھر ہم آپ سے اور باتیں کریں گے. جی جاوید صاحب.
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام جاوید صاحب, آج آپ لوگ کشمیر سے بہت خوش ہیں سب لوگ محمود احمد صاحب کے آنے میں.
جی جی, میں محمود صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں تعلیم کے لیے.
جی
شکریہ. جی شکریہ جاوید صاحب.
جاوید صاحب آپ کی آواز کچھ ختم ہو گئی ہے میرا خیال ہے, ان کا فون کٹ گیا, آج ہماری کالز ڈراپ ہو رہی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اس میں حکومت کا کس حد تک ساتھ ضروری ہے اس طرح کی کوئی پروجیکٹ شروع کرنے میں جو آپ نے کیا تعلیم کے بارے میں؟
اصل میں حکومت کا ساتھ ویسے تو بڑی امپورٹنس ہے حکومت کی, کہ حکومت کی پالیسیاں کیا ہونے چاہیے اور کیا ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی بھی اس طرح کا کام شروع کرے اس کو ذہناً اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ اس کو حکومت سے کوئی زیادہ تعاون نہیں ملے گا. اگر آپ لیول ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھیں گے کہ حکومت آگے بڑھ کر آپ کی بڑی مدد کرے گی, تو حکومت کے بھی اپنے حالات ہیں, اپنے انوائرمنٹ ہے, اپنی ہماری جو سرکاری پرفارمنس کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں. تو ہم تو اسی کو ایک بڑا تعاون سمجھتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے کے مواقع موجود ہیں, تو یہ بھی ایک بڑا تعاون ہی ہے ہمارے نزدیک. تو باقی یہ ہے کہ یعنی کہیں کہیں پرابلمز بھی آتی رہتی ہیں. مثلا ہم تو پورا کوشش یہ کرتے رہتے ہیں کہ حکومت کو یہی ان کو تاثر دیں کہ یا ان تک یہ بات کمیونیکیٹ کریں کہ ہم آپ ہی کی ٹیم کا ایک حصہ ہیں, صرف یہ ہے کہ ہم تنخواہ نہیں لیتے اور بغیر تنخواہ کے آپ کے سپاہی ہیں, لیکن پبلک پریکٹیکلی ایکسیپٹینس بڑی کم ہوتی ہے. تو اب میں ایک پروجیکٹ میں گورنمنٹ کے سکولوں کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں کہ ان کے ٹیچرز کو موٹیویٹ کیسے کیا جائے, اور اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ایک ہمارے جو منسٹر ایجوکیشن کے ان کے ساتھ مل کے ہی, اور ہمارے جو سیکٹری ایجوکیشن کے انہوں نے اس میں بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. تو اب تعاون بھی ان کا رفتہ رفتہ ہمیں حاصل ہونا شروع ہو گیا, لیکن جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے نا جب آپ کو کوئی ریکگنیشن نہیں ہوتی ہے, جب آپ نے ڈلیور نہیں کیا ہوتا. اب تو گورنمنٹ کا کوئی اجلاس ایسا نہیں ہے جس میں وہ مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں جی ریڈ فاؤنڈیشن کے نتائج اگر بہتر ہیں تو آپ کے نتائج کیوں نہیں بہتر ہیں.
لیکن میں یہاں پہ ایک بات پوچھنا چاہوں گی آپ سے, کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے, کیونکہ ہمیں کہانیاں ہر طرح کی ملتی ہیں. تو ابھی کل ہی میں سندھ سے آئی ہوئی کہانی پڑھ رہی تھی جہاں بیچاری ایک لڑکی نے اپنی کوشش سے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اسکول شروع کیا, تو اس کو بلا کے دھمکایا گیا, تشدد کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ آپ ہٹائیے اسکول کے یہاں سے ورنہ ہم آپ کو اغوا کر لیں گے. اور یہ سچی کہانی تھی, اور ایسی کہانی کوئی یہ نہ غیر معمولی ہے نہ کوئی حیرت انگیز ہے. تو جو آپ نے بات کہی ابھی کہ یہی کچھ کم نہیں کہ ہمارے راہ میں دشواریاں نہیں پیدا کی گئیں, کیونکہ کشمیر میں عمومی طور پر تعلیم کے لیے, خاص طور سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ماحول بہتر ہے, یعنی ماں باپ کی طرف سے ریزینٹمنٹ نہیں ہے وہاں پر؟
نہیں, میرے خیال میں کشمیر میں اب سچویشن بالکل تبدیل ہو چکی ہے. اور اب جو اس وقت جو سوائے چند ایک علاقوں کے وادی نیلم میں, اس کے لیے بھی ہم نے کچھ خصوصی پروگرام لائے ہیں اور پروجیکٹ کیے ہیں کہ آؤٹ آف اسکول بچیوں کو ہم کس طرح سے انرول کر سکیں اور ان کو کیچ اپ پروگرام کیسے دے سکیں. اب تو آزاد کشمیر میں جس طرح سے ہر بچہ اسکول جاتا ہے, ہر بچی بھی اسکول جاتی ہے, اور اس انوائرمنٹ کو پیدا کرنے میں بھی ہم نے ایک رول ادا کیا. اور اب وہ بچیاں جو ہماری پہلی کلاس میں آئی تھی, اس وقت لوگ بچیوں کو 94 میں ان کی تعلیم پر کمر کم انویسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن اب جو ہے وہی بچیاں جب ماسٹرز کر کے, ایم ایس سی کر کے, بی ایس سی کر کے آئی ہیں اور ان کو وہاں ہم نے ملازمتیں بھی فراہم کی ہیں, تو اس کے نتیجے میں ماحول میں کافی بڑی تبدیلی آئی ہے. اور اب آزاد کشمیر کی حد تک تو یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے کہ کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن ہو. چند علاقے جو بارڈر ایریاز ہیں یا بہت زیادہ دور علاقے ہیں, ان میں قدرے ہو سکتا ہے, لیکن میجورٹی آف دا ایریاز میں اس وقت یہ سچویشن موجود نہیں ہے. اور یہ ایک اسٹرگل کے نتیجے میں یہ سچویشن چینج ہوئی ہے, اور اس میں ریڈ فاؤنڈیشن کا بھی الحمدللہ ایک بنیادی رول ہے,
اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, ہم تین کالرز کے سوال لے لیتے ہیں کہ ان کی کال ڈراپ نہ ہو جائے. ڈوبر ٹیک سنگھ سے ایک بار پھر ارم اشرف ہمارے ساتھ ہیں. جی ارم اشرف. ارم
ہلو.
جی وعلیکم السلام ارم.
ابھی میرا نام میرا مشرف ہے, میں توبہ ٹیک سنگھ میں رہتی ہوں.
جی
میں نے ماہ رمضان میں کہانی لکھی تھی جو کہ آپ نے سنی بھی ہے.
اچھا,
لیکن آپ نے بڑی کے بعد میرے گھر کال کی ہے, میرے پاپا سے بات ہوئی ہے, اس کے بعد مجھ سے آپ کی بات. اور میں نے فرسٹ ایئر میں اب دوبارہ سائی والے میں ایڈمیشن لیا تھا, لیکن وہاں بھی مجھے ایڈمیشن نہیں ملا, میرے ایم او سی کا پرابلم آیا ہے اور آپ کی طرف.
تو آپ نے ارم کہانی سنا دی تھی یا آپ نے کہانی سنائی نہیں کبھی بھی؟
سنائی تھی.
تو آپ کی کہانی میں کون مہمان تھے جب آپ نے کہانی سنائی تھی؟ ہم نے کسی کو
آپ تین میرے پاپا سے بات ہوئی تھی.
نہیں
آپ نے بتایا تھا مجھے نہیں.
تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا آپ کی زندگی کی کہانی, آپ کو تفصیلی معلوم. مجھے تو اس وقت یاد نہیں کہ کیا کہانی تھی آپ کی, مگر مجھے اگر صحیح یاد آ رہا ہے تو ہم نے آپ کے لیے بکر میں کالج تھا جنہوں نے کہا تھا کہ پورا اسکالرشپ کے ساتھ آپ کو پڑھا دیں گے وہ, لیکن آپ والدین
نے نمبر دیا تھا.
جی اچھا, آپ ایسا کریے اپنا نمبر, آپ ایسا کریں کہ ارسلان کو اپنا ٹیلی فون نمبر دیجیے تاکہ وہ آپ سے فون پہ یا ان کو تفصیل بتا دیجیے. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے بعد میں بات کروں گی. اصغر خٹک ہے کرک سے. جی اصغر خٹک. اصغر
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام اصغر, جلدی سے اپنا سوال بتائیے کیونکہ بہت کم وقت ہے.
مہمان کو میری طرف سے دعا سلام. اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا آزاد کشمیر میں تو ماشاء اللہ انہوں نے بہت کام کیا ہے, تو ہمارا صوبہ بہت جو وہ بھی ایجوکیشن کرایہ سے بہت مسائل ہے کی پی کے, اس کا کوئی ارادہ ہے جو ٹی پی کے میں پسماندہ علاقے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کے اسی طرح ہی پرابلم ہے جو پرابلم آزاد کشمیر میں یا؟
ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کا سوال. جی محمود صاحب, آپ نے ان کا سوال سن لیا ہوگا.
ان سے میں یہی گزارش کروں گا جی کہ ہمارے ملک کا مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہر علاقے کے لوگوں میں سے خود وہیں سے لوگ کھڑے ہوں اور اٹھیں اور اپنے اپنے علاقوں میں یعنی مشعل لے کے نکلیں اور روشنی کو پھیلائیں. تو اب میں تو ظاہر ہے آزاد کشمیر میں نے کام شروع کیا ہے, تو میں اگر 1000 اسکول اور آزاد کشمیر میں ہی کھول دوں تو پھر بھی وہیں کی میں ضرورت کو مشکل سے پورا کر سکتا ہوں. لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ جو ان کو مجھ سے معلومات چاہیے, طریقہ چاہیے, ٹیکنالوجی چاہیے, وہ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں ہر جگہ کے لوگوں سے ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں میں لوگ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت اگر اٹھیں گے تو پھر ہم نے گورنمنٹ کے سکولوں کو بھی امپروو کر دیا, اس لیے کہ اب لوگوں کے پاس ایک الٹرنیٹ آ گیا ہے. تو جب الٹرنیٹ آ جاتا ہے تو ان کو پھر اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی پڑتی ہے. جب ہم بہتر نتائج دے رہے ہیں تو گورنمنٹ کے स्कूल भी उससे बेहतर होने पे मजबूर हो गए हैं। तो मैं इनसे यही कहूंगा कि ये उठें और हम इनकी पूरा तावन करेंगे इनके साथ। इनके साथ ही नहीं, पाकिस्तान में जहां जहां तक लोग मेरी बात सुन रहे हैं, कोई भी अगर अपने इलाके में काम करना चाहता है, आए हमारे मॉडल को स्टडी करे और इसी तरीके से जाके अपने इलाके में काम शुरू करे।
जहाँ तक मुझे पता है,
स्टाइल के साथ काम शुरू करे तो इंशाल्लाह काम आगे बढ़ेगा।
मुझे थोड़ा सा केपीके के बारे में ये पता है कि सिटीजन फाउंडेशन वहाँ काफी सरगर्म है, उन्होंने स्कूल भी खोले हैं। तो असगर खटक साहब, ये जो बात अभी महमूद अहमद साहब ने कही, मैं हमेशा आप लोगों से यही बात कह रही हूँ कि कोई एक शख्स तमाम मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकता। वो अपने इलाके के मसाइल अगर हल कर दे वो भी एक बहुत बड़ा कामयाबी है, और उस पर हमें हमेशा उसको दाद देनी चाहिए। तो अक्सर हमारे सुनने वाले यही कहते हैं कि हमारे इलाके में, लेकिन हर इलाके के लोगों को, खुद आम आदमी को भी एक्टिविस्ट होना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर कोई ग्रुप बनाना चाहिए, छोटे छोटे स्कूल, ट्यूशन सेंटर, ऐसी जगह कायम करनी चाहिए। अच्छा, अब्दुल हक बुक्ती हमारे साथ हैं जामशोरों से। बुक्ती साहब,
अस्सलाम वालेकुम भाजी।
जी वालेकुम सलाम अब्दुल हक बुक्ती।
मोहम्मद अहमद साहब का तो जो काम कर रहे हैं इसको मैं मुबारकबाद देता हूँ।
जी शुक्रिया।
लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा इलाका है जामशोरों में, तो अगर जो लोरी बोर का इलाका है उसमें हमारे बलूच आबादी है, पत्थर तोड़ते हैं लोग, स्कूल बिल्कुल नहीं है कोई भी, सारे बच्चे बच्चियां बगैर तालीम अपना टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन ऐसा कोई इदारा, कोई शख्स नहीं है कि इधर स्कूल का बंदोबस्त करें। महमूद अहमद से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जामशोरों में आपका कोई ब्रांच, कोई इदारा है या नहीं है सिंध में?
महमूद साहब ने अभी जवाब दिया है। मैं एक बात,
हमारा जामशोरों में तो इदारा नहीं है कोई, लेकिन ये है कि हम आपकी जो मदद कर सकते हैं यही है कि आपको काम करने का तरीका सिखा सकते हैं। मुफ्ती साहब, अपने इलाके में आप ही ने काम करना है।
सही बात। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ महमूद अहमद साहब, शायद आप भी थोड़ा सा उसमें इजाफा कर सकें तो मुझे खुशी होगी। मेरा ये ख्याल है कि हमारे सुनने वालों को अपने वोट की अहमियत से आगाह होना चाहिए। अगर जामशोरों कोई देही इलाका नहीं है, जामशोरों एक ऐसा इलाका है जहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज उसी इलाके में है सिंध में, तो क्यों नहीं उस इलाके में स्कूल है? ये बड़े अफसोसनाक बात है। और आपके इलाके का जो भी नुमाइंदा है जिसको आपने मुंतखब किया है अपने वोटों से, ये जवाब लेना चाहिए आप लोगों को। और अगर उस शख्स ने तालीम के लिए कुछ काम नहीं किया तो आपको आइंदा वोट नहीं देने चाहिए उस शख्स को। तो महमूद अहमद साहब, मेरा ख्याल है एक एजुकेशन ये भी होनी चाहिए कि लोग अपने वोट के हक का इस्तेमाल कैसे करें।
जी बिल्कुल, इस पे पाकिस्तान में एक तंजीम अलिफ ऐलान है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि वो ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स आप भेजते हैं उनसे उन लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, एडुकेसी कर रहे हैं कि कैसे आप उनको एजुकेशन की तरफ लाएं, और जो सियासी जमातें हैं उनको इसकी तरफ ला रहे हैं, और इसमें उन्होंने काबिल कदर काम किया है। तालीम में काम करने की हजार जेते हैं और उसमें से ये भी एक बहुत अहम काम है कि आप हर फर्द अपने इलाके में जो गवर्नमेंट के वो रिसोर्सेज जो ऑलरेडी एलोकेशन जिनकी होती है कम से कम वो इफेक्टिवली इस्तेमाल हों, तो इसके नतीजे में भी जो है एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। और इसके लिए कम्युनिटी को मोबिलाइज किए बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो ये आपने बिल्कुल बजा कहा कि इस पर भी काम होने की जरूरत है, और अलिफ ऐलान इस काम को बहुत ही, जिस तरह से TCF और रीड फाउंडेशन खुद स्कूल बनाकर काम कर रही हैं, तो इसी तरह से अलिफ ऐलान जो है तालीम के महाज पे एक लिहाज से एडुकेसी का काम कर रहा है। और एडुकेसी में भी उनका फोकस ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो उनको कैसे आप जो है ना मजबूर कर सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल में एक ये भी बड़ा अच्छा होगा, मैं आपको ये तजवीज करूंगा कि अलिफ ऐलान वालों को भी आप वेबसाइट वगैरह से उनको देख लें, उनको भी आप बुलाएं ताकि वो लोगों के अंदर ये अवेयरनेस दे सकें कि वो अपने जो वोट की ताकत है इसको एजुकेशन की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने में लोगों को कैसे काम करना चाहिए। ये वो बहुत अच्छी, इस पे काम भी वो कर रहे हैं।
और मेरे जैसे कि आपका नाम आया कहानी में तो मैंने फौरन आपको तलाश किया, मैंने नोट कर लिया था आप जो बात कर रहे थे उसी वक्त अलिफ ऐलान का कि हम इनको अपने किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे। अच्छा, आपसे बहुत सी बातें हुई ज़ाहिर सारी आपके काम के मुताबिक, लेकिन कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें बताइए, आपके अपने बच्चे किस हद तक आपके मिशन से उनकी वापसगी क्या है, यानी अमली नहीं लेकिन ज़हनी तौर पर, और ख़ुद उन्होंने कौन से शोबों का इंतखाब किया, आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं हमें।
बस मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे जिसमें से 3 बच्चे शादीशुदा हैं, सबसे मेरी बड़ी बच्ची हैं, उनकी शादी हुई है और उनके भी 2 बच्चे हैं, उसके बाद मेरा बेटा है उसकी भी शादी हुई है, वो बरतानिया में है, वहाँ कारोबार वगैरह उसने अपना तालिबिल्म ही गया था, तो बहरहाल वहाँ उसने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो उसकी भी एक बेटी है, और उसके बाद मेरी जो तीसरे नंबर की बेटी है वो सऊदी अरब में है और उसकी भी एक बेटी है, और एक बेटी मेरी है उनकी अब दिसंबर में शादी होने वाली है, और एक बेटा है जो FSC में पढ़ रहा है, और एज ए होल हम मेरे सारे बच्चे ही इस काम के अंदर मेरे मावन और मददगार हैं, और बतौर खास जो मेरी एक बेटी जिसकी अभी शादी होने वाली है तो वो इसमें करेक्टर एजुकेशन में मेरे साथ काफी वो काम करती है, और मेरी बेगम ने भी काफी मेरा इस लिहाज से साथ दिया है कि कम अज कम उसने घर के कामों काजों से मुझे फारिग रखा है, जिसकी वजह से मैं यानी इसी काम के अंदर लगा रहा हूँ, और जब आप कोई काम किसी काम के अंदर जुट जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ आपकी फैमिली बाज़ औक़ात मुतासर भी हो जाती है। कई जगह लोग मुझसे पूछते हैं आपके बच्चे कितने, तो मैं उनको कह देता हूँ 90,000, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमारा मतलब है कि आपके कितने बच्चे, तो मैं कहता हूँ वाकई 90,000 है, या कभी कभी जो है वो मैं बच्चों की क्लासें भूल जाता था तो वो ये कहते हैं कि अबू आपको हमारी क्लास ठीक से याद नहीं है, तो जब आप किसी इस तरह के काम में लगे होते हैं तो कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो उसमें जब तक आपकी फैमिली आपके पुश्त पे ना हो तो उस वक्त तक काम होना जो है वो काफी मुश्किल होता है। इसी तरह मेरे भाई ने भी मेरा बड़ा साथ दिया है,
अच्छा।
और उन्होंने भी यानी एक लिहाज से माश के मैदान में जो मेरा छोटा मोटा कारोबार था उसको एक तवील मुद्दत तक उन्होंने संभाले रखा, और ये भी हुआ है कि मैं एक दफा अपने कारोबार में अपनी टैक्स रिटर्न साइन करने के लिए गया तो जो मेरे मुलाजम थे उन्होंने मुझे गाक समझा, तो
अच्छा।
इससे आप मेरा कारोबार में यानी जो इन्वॉल्वमेंट है उसका आप अंदाजा लगा सकती हैं। तो
वैसे मुझे खुशी है कि आपने बेगम का नाम लिया, अभी कुछ देर पहले एक साहब ने पूछा था सवाल आपसे कि आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, तो मैं कहने वाली थी कि महावरतन तो हमेशा एक कामयाब और मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो शरीक हयात का तो जरूर हिस्सा है उसमें, तो कामयाबी से मेरा मतलब एक मिशन की कामयाबी है आपके, तो
नहीं बिलाशुबा जब तक के आपको घर से सुकून दस्तयाब ना हो तो आप कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकते हैं, तो वरना तो घरेलू झगड़े निपटाना ही एक मुश्किल काम हो जाता है। अल्लाह ने इसमें हमें खुश नसीब बनाया है कि हम यानी अपने इसी मिशन में लगे रहे हैं, और इसके अलावा हमें कोई और ऐसी मुश्किल दरपेश नहीं थी।
तो जल्दी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि हमारे इस प्रोग्राम में जो कहानियाँ आती हैं उसमें कश्मीर के कई बच्चे और नौजवान अपने ज़रूरियात की वजह से और गुर्बत की वजह से कॉलेजों में दाखिला ना लेने की, और हमसे कहते हैं कि आप हमारा कहीं करवा दें, तो क्या हम आपके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनके सिलसिले में जो ज़हीन बच्चे हैं और जो पढ़ नहीं सकते गुर्बत की वजह से?
जी जी बिल्कुल आप भेज सकते हैं, हम काफ़ी जदोजहद करते भी हैं अपने वसाइल के अंदर रहते हुए, हमने बेशुमार बच्चों को ऐसे स्कॉलरशिप क्रिएट किए हैं जिनके जरिए से हमने उनकी तालीम का इंतजाम भी किया। ये मुश्किल तो है कि हमारे माशरे में जो मसाइल की शरह है वो बहुत ज्यादा है, और उसके मुकाबले में जाहिर है हमारे पास लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम अपनी हद तक बिल्कुल आप भेजें भी और हम इसकी पूरी कोशिश भी करते हैं कि जिस हद तक भी लोगों के साथ कोई ना कोई तावन हो, बाज़ औक़ात हम उनके लिए कोई इस तरह के रास्ते निकाल देते हैं
बिल्कुल
जिसके जरिए से उनका कोई ना कोई रास्ता निकल आता है।
बिल्कुल
अभी मैं इस हफ्ते ही लाहौर गया हुआ था, वहाँ एक किसी जगह किसी में ऐसी तकरीब में कोई अवार्ड वगैरह थे, तो वहाँ एक बच्ची मुझे मिली तो वो हमारे स्कूल से पढ़ी हुई थी, तो उसने कहा कि आगे फिर हमारे कुछ दोस्तों ने एक और स्कॉलरशिप उसको दिलवा दिया और उसके नतीजे में उसकी तालीम जो है
हो गई,
मुमकिन हो गई।
बहुत शुक्रिया, मैं आपका अदा करूंगी महमूद अहमद साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे सुनने वालों से गुफ्तगू की, और सामिन इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगी, ये खूबसूरत गीत सुनिए और हम सबको इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।